हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 8। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हम गुरु गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनी पीताम्बरधारा बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यं ब्रह्मा वरुन्दरुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे समुपनिषदे गायन्ति समगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तन्मे नमः। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरां यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। శ్రీ అద్వైతాంగదాధారం శివాసది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జై హో. पहला सिकंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 8. कृपया इन दिव्य शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. सूत जी कह रहे हैं, तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षि त्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणां यत. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यत. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य स तन्त्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षि त्वमुपेत्य सह तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः. शब्दों का अर्थ देखिए. तृतीयम अर्थात तीसरा, ऋषि सर्गम यानी ऋषियों के, ऋषि सर्ग ऋषियों का कुल है ना, उसमें वाय यानी निश्चय ही देवर्षि त्वम देवताओं में ऋषि का अवतार यानी कि देवर्षि उसका नाम. वरना तो सारे ऋषि सर्ग ऋषियों के कुल में पैदा हुए लेकिन वो मानवों के ऋषि नहीं है, देवर्षि हैं. कौन है वो आगे बताएंगे. देवर्षि त्वम उपेत्य सह, उपेत्य मतलब स्वीकार किया, आपने देवर्षि का नारद यानी देवर्षि यानी नारद जी का अवतार लेना स्वीकार किया. सह यानी उसने, उसने यानी जो अवतार हमने देख रहे हैं ना कि शिरोदक्षा विष्णु से जो जो अवतार हो रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी का हुआ शक्तियावेश अवतार, अब ब्रह्मा जी का ना भगवान गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि कमल से जो कमल उत्पन्न हुआ उनसे अवतार हुआ. उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी से प्रथम देव कौन, कौमारम सर्गमाश्रित, फिर कौमार संत कुमार जो चार कुमार है ना, संत सनक सनातन और सनंदन, इनका अवतार हुआ. उसके बाद कल हमने क्या पढ़ा, द्वितीयम कौन थे, तृतीयम तु भवायस्य रसातलगतामही उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञ सौकरम वपु. फिर दूसरा किसका था, सौकर्म वपु अर्थात वराह का। आज तीसरे के विषय में बता रहा ना, तृतीयम ऋषि सर्गान वाये देवर्षि त्वम उपेत्य सह, देवर्षि त्वम उपेत्य सह, देवर्षि का आपने अवतार लिया, यानी भगवान का अवतार है देवर्षि नारद जी। और आगे बता रहे हैं, तंत्रम सात्वतम आचष्ट, तंत्र मतलब वेद का, उन्होंने किस कारण से अवतार लिया वो अब बता रहे हैं, ठीक है। तंत्र यानी वेद का भाष्य, सात्वतम यानी विशेषतया भक्ति के लिए, आचष्ट यानी संग्रह किया, नैष्कर्म्यम यानी निष्काम, कर्मणाम यानी कर्म का यतः। अनुवाद देखिए, ऋषियों के स्वर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्ति आविष्ट अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की शक्तिश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। यानी कि अब भगवान के तीसरे अवतार शक्ति आवेश अवतार हैं, उनके विषय में कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत में भक्ति का प्रचार उन्हीं के द्वारा हुआ है। अर्थात आज हम सब जो भक्ति करते हैं, जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नारद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। जगत के विभिन्न लोकों तथा सारी योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके ही शिष्य हैं। शिवप्पा जी बोलते हैं ये प्रथम आचार्य हैं और बहुत सारे बड़े बड़े भक्त जो हैं वो सब इन्हीं के शिष्य हैं। श्रीमद् भागवतम के संकलन करता श्री वेद व्यास जी भी उनके शिष्य हैं, है ना। यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं वो कितने बड़े प्रचारक हैं, क्योंकि समस्त वेदों के संकलन करता जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं वो वेद व्यास जी भी नारद जी के शिष्य हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। बद्धजीव अधिकांशतः सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह संसार समस्त जीव योनियों के सकाम कर्मियों से परिपूर्ण है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्राकृतिक नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल सापेक्ष भौतिक संपन्नता है, किंतु बुरे कर्म का फल सापेक्ष भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख के कारण है। मूर्त भौतिकतावादियों को ये पता ही नहीं कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। नारद इन मूर्खों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य उस रोगी को जो दूध की बनी वस्तु खाने से कुपच का शिकार हो जाता है, दूध से ही बनी दही का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही संदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो जाएगा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो आज हम भगवान के तीसरे अवतार जो कि शक्ति आवेश अवतार है तृतीय सर्गम वय देवर्षि तम उपेत्य सह, यानी देवर्षि नारद का अवतार, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि शक्ति आवेश अवतार होता क्या है। शक्ति आवेश अवतार का क्या मतलब है कि एक साधारण व्यक्ति हो, मतलब उसमें भगवान नहीं होता है वो, लेकिन उसके अंदर भगवान अपनी विशेष शक्ति का प्रसार करते हैं जिसके कारण उनको कोई कार्य सौंपा जाता है जिससे वो करते हैं। ठीक है, जैसे परशुराम जी, वो भी भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। वो भगवान नहीं है लेकिन उनको भगवान ने यह शक्ति प्रदान की कि वो क्षत्रिय जो दुष्ट है उनका नाश करें, इस तरह से उनको यह शक्ति प्रदान की। अब नारद मुनि भी शक्ति आवेश अवतार है, तो वो क्या प्रदान करने के लिए आए हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया, तो ये भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। वास्तव में भक्तों, आज हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो नारद मुनि की देन है। जो डीटी वर्शिप, जो विग्रह सेवा हम कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है, ये जो हमारी दीक्षा पद्धति है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बनाने वाले या फिर वो उनको निर्माण करने वाले, वास्तव में बनाए नहीं है नारद मुनि ने। ये कैसे होता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो वही है जो साक्षात भगवान प्रदान करते हैं, परंतु भगवान एक एक बंदे को पकड़ कर ये नहीं बोलते कि भाई आपको सुबह उठकर मंगल आरती करनी है, आपको संध्या आरती करनी है, आपको रोजाना इतनी माला करनी है, आपको डीटी वर्शिप करना है, हर एक को तो नहीं बोलते। तो भगवान किसी विशेष व्यक्ति को आदेश देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो विशेष व्यक्ति जो होता है उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि जाओ तुम इस चीज का प्रचार करो। तो जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ ना तंत्रम, तंत्रम का मतलब होता है वेद, वेद का भाष्य है ना, वेद के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से क्या। अब वेद में तो बहुत बहुत चीजें लिखी हुई होती हैं। सात्वतम आचिष्ट का, सात्वतम का मतलब होता है विशेषतया भक्ति, और वेद में से भक्ति का पूरा जो पोषण है ना वो निकाला उन्होंने और आचिष्ट उसको संग्रह किया। और दूसरा कार्य क्या किया, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यत, नैष्कर्म्यम मतलब निष्काम कर्म से, कर्मणाम यानी कर्म का, यत जिससे, यानी कर्म से निष्काम कर्म के को किस तरह से एक ब्रिज बना के दिया कि आपको किस तरह से कर्म करते करते निष्काम कर्म तक आना है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने इस चीज को बहुत ही सुंदर रीति से दूध और दही के उदाहरण से बताया कि जैसे दूध से क्या होता है, अगर किसी को अपच हो जाता है मतलब डाइजेशन खराब हो जाएगा, तो दूध से तो डाइजेशन खराब हो गया उसका, अब उसी दूध से बनी हुई दही से उसका रोगी का रोग दूर करने का जो फिजिशियंस होते हैं वो सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद ने एक बात बताई है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। यानी कि ऐसा है, देखो ये भगवान, ये श्री प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने निष्काम कर्म की विधि बताई, ऐसे बताया ना नैष्कर्म्यम कर्मणाम यत, कि निष्काम कर्म से निष्काम कर्म की ओर आना है। तो क्यों आना है, ये निष्काम कर्म का क्या मतलब है। अब इस चीज में हमें यहाँ पर ये पता है कि नारद मुनि के आने के दो कारण लिखे हुए हैं। शुरू वाली लाइन में क्या लिखा है, तृतीयम ऋषि सर्गम वय देवर्षि तम उपेत्य सह, दूसरा आपने देवर्षि का, तीसरा देवर्षि का ना स्वरूप अवतार लिया शक्ति आवेश अवतार, और उनमें भी दो काम किए, तंत्रम सात्वतम आष्टष्ट, आपने सात्वतम तंत्र का निर्माण किया, यानी कि विशिष्ट भक्ति को निकाल के आपने उससे संग्रह किया। और दूसरा क्या बताया, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यता, पहला काम क्या क्या, भक्ति का संत, ये क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था, उन्होंने नारद पंचरात्र का निर्माण किया। और ये पंचरात्र क्या होता है, भगवान नारायण के द्वारा डायरेक्ट से लिया गया इंस्ट्रक्शन, भक्ति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो सब स्वयं नारायण भगवान से ने जब इसका उपदेश दिया तो उसको लिखने के बाद वो पंचरात्र बना है। लेकिन वो किस किस को, नारायण भगवान तो हर किसी को जैसे शिक्षा देते, कभी नारद को, कभी ब्रह्मा को, कभी लक्ष्मी को, कभी शिव को, तो इनको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इंस्ट्रक्शन जिसमें हमें ये बताया गया है कि भगवान की विग्रह उपासना कैसे की जाती है। यानी कि एक बार क्या हुआ कि वेद चोरी हो गए थे, है ना, एक दुष्ट ने वेद सारे चोरी कर दिए थे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से जाके कहा कि भगवान अब वेद तो चोरी हो गए हैं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा नित्य कर्म है, रोजाना वेदों का ना अध्ययन करता हूं। तो भगवान ने कहा वेद में क्या लिखा है, मेरी उपासना करना ना, तो आप ऐसा करो मेरी उपासना करो। यानी फिर ब्रह्मा जी ने कहा कैसे, तो फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने ये उपदेश दिया कि आपको कैसे विग्रह उपासना करनी है। तो उन सब जो भी विग्रह उपासना की जो भी बातें हैं वो अलग अलग पंचरात्र, अब ऐसा नहीं है, पंचरात्र भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर कहा जाता है तो विशिष्टया 108 ग्रंथ है। यानी श्री विग्रह की सेवा हम कैसे संपूर्ण कृष्ण की सेवा में समर्पित हो सकते हैं, इसके बारे में पंचरात्र में शिक्षा दी जाती है। विग्रह की सेवा से हम कैसे ये रियलाइज करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को साक्षात्कार करें, विग्रह की सेवा से भगवान की भक्ति में समर्पित होना। तो क्योंकि ये विग्रह क्या है, भौतिक पदार्थ से बनी हुई है, और लेकिन फिर भी हमें ये जानना है कि ये भौतिक पदार्थ से भले बनी हो लेकिन यह साक्षात भगवान है। अब ये पंचरात्र में क्या, पांच विभाग हैं, जिसमें से पहला है ज्ञान। ज्ञान में, ज्ञान का क्या मतलब है कि किस बारे में ज्ञान होता है, पदार्थ, आत्मा और भगवान, इन तीन चीजों के विषय में ज्ञान होता है। पदार्थ मतलब भौतिक पदार्थ जो भी हैं, जैसे पंच महाभूत स्पेशली, और आत्मा यानी जीव आत्मा और भगवान, इनके विषय में ज्ञान पता चलती है। और उसके बाद क्या है, डीटी में क्या होता है, जो हमारे भगवान की विग्रह होती है वो है तो पदार्थ, लेकिन हमें उसको क्या समझना है, स्वयं भगवान, ये साक्षात भगवान है। तो ये ज्ञान कि कैसे पदार्थ से बना हुआ डीटी स्वयं भगवान है, ये पहला ज्ञान पंचरात्र में आता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है अर्शन। अर्शन का मतलब होता है उपासना या पूजा विधि। तो जो ज्ञान, वो ज्ञान जो कि श्री विग्रह ही भगवान है, उसका अर्चन कैसे करना है, अभी उसकी उपासना के, उसे पूजा कैसे करनी है उसकी, उसके विषय में जो ज्ञान है उसको अर्चन कहते हैं। उसके बाद है योग। योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना। तो अभी तो भगवान हमारे पास कौन से फॉर्म में, विग्रह फॉर्म में, तो विग्रह की सेवा करके हमारी चेतना को किस प्रकार हम शुद्ध करके भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। समझ में आया कि अभी भगवान हमारे सामने तो विग्रह रूप में है, लेकिन हम भगवान की सेवा ऐसे करें इतना प्रेम उन विग्रह के साथ निर्माण हो, इतना आदर हो हृदय में, इतनी लालसा हो उनके साथ प्रेम करने का, इतना भाव ऐसा हो कि उसी प्रेम के साथ हृदय इतना शुद्ध हो जाए कि भगवान के साथ डायरेक्ट हमारा संबंध जुड़ जाए। तो ये है योग जो पंचरात्र। अभी देखो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पहले हम विग्रह सेवा करते हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस करते 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 वो हमारा स्वभाव बन जाता है और हम हृदय से प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह करते करते पहले ज्ञान पता चलेगा कि ये डीटी जो है वो विग्रह नहीं है बल्कि साक्षात भगवान है, फिर उसका अर्चन करने का तरीका सीखेंगे और इस तरह से भगवान के साथ उसके बाद योग। और चौथा है कार्य। कार्य का मतलब होता है कार्य कैसे करना है आपको। कार्य दो तरह के होते हैं, एक नित्य कर्म दूसरे नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म में क्या होता है, रोजाना का कार्य, जैसे दीदी को रोजाना आना, मंगल आरती करना, संध्या आरती करना, दो तीन टाइम प्रसाद खिलाना और है ना भगवान के श्रृंगार दर्शन करना इत्यादि, ये नित्य है। और नैमित्तिक क्या होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कभी रथ यात्रा हो गई, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, तो उस दिन हमको उत्सव सेलिब्रेट करना होता है विग्रह के साथ। तो ये है कार्य कि हमें क्या क्या कार्य करना है। और नंबर पांच पर आता है शिव विग्रह की स्थापना के विषय में, कि जब स्थापना भगवान की जाती है तो उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान जो है वो नारद पंचरात्र में नारद जी के द्वारा वर्तन्त है। और इस नारद पंचरात्र का सबसे बड़ा जो मुख्य बात है वो क्या है कि ये नारद पंचरात्र नारद के द्वारा वर्णन तो किया गया परंतु शिवजी के द्वारा इसका संस्करण हुआ है और नारद जी के द्वारा उसका वर्णन हुआ है। ये नारद पंचरात्र है जिसके अंदर संपूर्ण भक्ति की विधि लिखी हुई है। वास्तव में जितने भी वैष्णव संप्रदाय हो चुके हैं अब तक, वो सारे वैष्णव संप्रदाय पंचरात्र के अनुसार ही अपने नित्य और नैमित्तिक कार्यों को डिसाइड करते हैं कि क्या कार्य करने, यानी कि क्या डिसाइड करते हैं कि हमें डेली कौन से कार्य करने हैं, भगवान की सेवा के लिए किस तरह सेवा करनी है, और नैमित्तिक यानी फेस्टिवल्स इत्यादि में हमें किस तरह से कार्य करना है, और दीक्षा पद्धति किस तरह से करनी है, सेवा किस तरह करनी है, सारा डिसाइड कैसे होता है पंचरात्र के अनुसार ही। तो उसी के आधार पर हो रहा है, पंचरात्र के आधार पर ही ये पता चलता है कि विग्रह सेवा कैसे करनी है। पंचरात्र के आधार पर ही सब कुछ हमें पता चलता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है विग्रह के अंदर। तो मुख्यतः सबसे पहले पंचरात्र विधि के अनुसार विग्रह सेवा पद्धति शुरू की थी रामानुज आचार्य ने। तो पूरे भारत में सबसे पहले उन्होंने पंचरात्र विधि के अनुसार विग्रह सेवा स्टार्ट की थी। पंचरात्र जो है वो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मतलब 108 मुख्य ग्रंथ हैं, लेकिन खास तौर पर हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, रूपानुगी जो हम वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड हैं, वो नारद पंचरात्र को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे परंपरा में मूल गुरु नारद मुनि, अब मूल गुरु मतलब ब्रह्मा जी के बाद जो पहले गुरु हैं जिन्होंने ना शिक्षा दी है वो नारद जी हैं। तो हमारी जो भी विग्रह सेवा पद्धति है, दीक्षा पद्धति है, हमारा डीटी वर्शिप है, सुबह 4 बजे मंगल आरती से लेकर रात को शयन दर्शन तक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब श्रील प्रभुपाद जी ने नारद पंचरात्र विधि को ध्यान में रखते हुए बनाया है। श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति करने की विधि के अनुसार एक शास्त्र हरि भक्ति विलास और गोपाल भट्ट द्वारा रचित सत्य क्रिया सार दीपिका, ये सब ग्रंथ जो है वो किसके आधार पर लिखे गए हैं, नारद पंचरात्र के आधार पर ही लिखे गए हैं। तो हम गौड़ीय संप्रदाय में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हरि भक्ति विलास और सत्क्रिय सार दीपिका में वर्णित है, क्योंकि नारद पंचरात्र बहुत ज्यादा डिटेल में है। तो हमें उसी में से संक्षिप्त में अकलयुग के इस दौर के अनुसार किस तरह से हमें भक्ति करनी है, तो वही एज इट इज मतलब उसी के रूल्स के अनुसार ही सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्य क्रिया सार दीपिका, ये दो पुस्तक बनाई है जिसके अनुसार ही हम सब गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी है ना भक्त हैं वो उसके अनुसार ही भक्ति करते हैं। और ये दोनों शास्त्र हरि भक्ति विलास और सत्क्रिय सार दीपिका किस पर आधारित है, वो दोनों आधारित हैं नारद पंचरात्र पर। हालांकि चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट से इंस्ट्रक्शन देते थे किनको, श्री रूप गोस्वामी को और श्री सनातन गोस्वामी को, यानी उनको डायरेक्ट से चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त था, पर चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि भक्ति की कोई भी विधि यदि आप स्टार्ट करो तो उसको शास्त्र प्रमाण से पहले प्रूफ करो कि कोई बगैर शास्त्र प्रमाण के कोई भी विधि आप नहीं अपना सकते। तो श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश को शास्त्र के प्रमाण पर रखकर वर्णन किया। तो जो भी शास्त्र ये जो पंचरात्र ग्रंथ है वो हम सब वैष्णवों के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, और हम वैष्णवों के लिए स्पेशल नारद पंचरात्र बहुत बहुत मुख्य भूमिका को निभाता है। अभी भी कोई विद्वान यदि हमसे पूछता है कि आपकी जो दीक्षा पद्धति है या जो आपकी विग्रह सेवा पद्धति है वो कौन सी आधार पर, कौन सी शास्त्र के आधार पर है, क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट से बोलेंगे ना श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है तो ये उनके शिष्य जो हैं उनके लिए मान्य है ना, लेकिन अलग से कोई है तो उनको तो वेद से हमें बताना पड़ेगा ना कि देखो इससे है। तो शास्त्र जो हमारी जितनी भी विधि है हम उनको बेझिझक ये बता सकते हैं कि तुरंत हमें ये बताना चाहिए कि ये जो हमारी सारी पूजा पद्धति है, जो पूजा विधि है, जो दीक्षा का जो पद्धति है वो सब नारद पंचरात्र के अनुसार ही है। और ये नारद पंचरात्र किसने बनाया, नारद मुनि, और नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहे थे, शिव जी ने नारद जी को टोटल ये सारी इंस्ट्रक्शन दी और नारद मुनि ने यह नारद पंचरात्र में बताया। अब इसमें क्या है, पंचरात्र में क्या होता है, देखो वेद के तीन विभाग होते हैं, कौन से, एक श्रुति, एक स्मृति और एक न्याय। श्रुति में क्या होता है कि भक्ति में क्या किया जाए, स्मृति में क्या होता है कि भक्ति में जो करना है वो कैसे किया जाए, और न्याय में क्यों किया जाए, है ना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्यों किया जाए। तो वेद के बहुत बहुत मुख्य विधान विभाग है, लेकिन क्योंकि हम इन सबको पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो इन सब का समन्वय कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब किसने बताया, ये सब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है किसने, पंचरात्र में। उसमें डायरेक्ट से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि यहाँ पर प्रणाम करना है, इस दिन उपवास रखना है, इसमें ये करना है और क्यों करना है वो सारा बता दिया, कैसे करना है ये भी बता दिया। तो सब संक्षिप्त में मिलाकर जो हमें भक्ति का भक्ति के इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं वो सब नारद पंचरात्र में है। वेद में बहुत कुछ है ना, अगर वेद में घिस गए ना तो इतना घुमा फिरा कर कान को पकड़ते हैं, सॉरी नाक को पकड़ते हैं कि व्यक्ति पागल हो जाता है, मतलब उसमें बहुत बहुत विधि बताई जाती है तो समझ में नहीं आता। तो नारद पंचरात्र में बहुत ही सरलता से भक्ति की विधि विधान बताए गए हैं, जो कि जिससे श्री रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी, हरि भक्ति विलास और फिर सत्य क्रिया दीपिका, ये दो पुस्तक हमारे लिए निर्माण हुए हैं किसके आधार पर, नारद पंचरात्र के आधार पर। तो ये जो पहला, दूसरी लाइन का पहला शब्द है ना, तंत्रम सात्यतम आचिष्ट, यानी कि इन्होंने एक संग्रह किया और शास्त्र निर्माण किया, कौन सा, नारद पंचरात्र, और उसमें क्या बताया, नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, नैष्कर्म्य कर्म से नैष्कर्म्य की ओर कैसे आना है। अब कर्म जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, पहला तो साधारण कर्म जिनको हम सकाम कर्म भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए जिस भी वर्ण में हम हैं उसके अनुसार जो जो ड्यूटी हमारे लिए प्रिस्क्राइब की जाती है वो कर्म है हमारे, वो हमें करने होते हैं, और जब हम वो करते हैं तो पुण्य मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। जैसे अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो दूसरा जन्म हमें अच्छी जगह पे मिलेगा ना, अच्छा जन्म मिलेगा, वहां पर धन दौलत मिलेगा, लेकिन अगर उससे भी अच्छा करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। लेकिन ये दोनों ही बंधन का कारण है। अगर पुण्य कर्म करने से सुखी जन मिलता है, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा धन होता है, तो ज्यादातर क्या होता है, जिसके पास धन होता है तो वो धन से उससे लाभ उठाकर भगवत सेवा नहीं करते, बल्कि और भी पाप अर्जित करते हैं, और फिर हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। अगर पाप अर्जित नहीं करते, स्वर्ग में चले जाते हैं, तो स्वर्ग में भी क्या है, वो स्थायी सुख नहीं है, क्षीर पुण्य मृत्यु लोक का मिशन। फिर जब आप वापिस से संसार में आओगे तो ये संसार तो क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये सर्कल खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितना ही ज्यादा पुण्य क्यों ना करो, कितनी अपने ड्यूटीज क्यों ना पूरे करो सारे, अब ये सब भले आप कितनी अच्छी तरीके से करते हो, भले कोई ना ये सोचता है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, खुद को जानने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की करता है, कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा, बल्कि परिवार के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जो भी ड्यूटीज हम इस संसार में रहकर निभाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हमारे बंधन का कारण बनती है। ठीक है, अब वो अच्छा कार्य है, पुण्य है, तो उससे बंधन मिलता है। और अगर उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है विकर्म। विकर्म क्या होता है, जो शास्त्रों में नहीं बताया गया है, मतलब जो शास्त्र में मना किया गया है, और इसको हम अपराध भी कह सकते हैं, पाप भी कह सकते हैं। और ये तो निसंदेह है, जो कोई विकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो वो तो निसंदेह बंधन बनेगा, क्योंकि उससे दुख मिलेगा, है ना। पहले जो हम पुण्य कर रहे थे उससे सुख मिल रहा था, वो सुख बंधन बन रहा था, और अब अपराध कर रहे हैं तो उससे दुख मिलेगा, और दुख ही बंधन बनेगा। दुख कैसे बंधन बनेगा, कि निम्न योनि में हम जन्म लेंगे, कोई पशु पक्षी की योनि में मिल जाएगा, या फिर अगर मनुष्य भी बने तो दरिद्र बनेंगे, कुरूप बनेंगे, या रोगी होगा, या इस तरह के हम भगवत साक्षात्कार में प्रगति करने में हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो अभी तीसरे नंबर का एक कर्म होता है, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम मतलब होता है नहीं, काम मना कर्म, काम मतलब कामना, हाँ, वो कार्य जिसमें आपका कोई कामना ना हो, कोई भी इच्छा ना हो। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप कार्य कर रहे हो और वो उसका सारा का सारा श्रेय आप सुप्रीम पर्सनालिटी को दे रहे हो, तो इसको अकर्म भी कहते हैं। अकर्म मतलब काम है, वो कर्म नहीं है। कर्म से तो रिजल्ट मिलेगा, जैसे प्रभुपाद ने अभी तात्पर्य में बताया था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर क्रिया की कोई ना कोई परिक्रिया है, लेकिन ये अकर्म है। अकर्म मतलब कर्म नहीं है, इसको निष्काम कर्म कहते हैं। इसमें पुण्य नहीं है, क्योंकि आप ना अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे हो, बैलेंस नहीं बना रहे हो, तो सारा आप फल तो पूरा भगवान को दे रहे हो, तो उसकी पुण्य नहीं है, तो इसका मतलब है सुख नहीं है। प्लस इसके अंदर पाप भी नहीं है, क्योंकि फल तो पूरा का पूरा भगवान को दे दिया ना, तो इसके अंदर दुख भी नहीं है। यानी कि वो कार्य जो कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेगा, उसको कहते हैं अकर्म। तो मृत्यु रूपी सागर से यदि बाहर निकलना है, तो पुण्य और अपराध, पाप और पुण्य, यानी सुख और दुख, समस्त बंधनों को काटना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म किसको कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चैप्टर नंबर 3 में। बहुत सुंदर श्लोक है, चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 9। भगवान कहते हैं यज्ञात् कर्मण्यत्र लोकोयम् कर्म बंधन तदर्थम कर्म कांतेय मुक्त संग समाचरण। कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ के लिए कार्य करो, अर्थात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करो, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसकी अतिरिक्त जो भी कार्य करोगे ना, यानी भगवान को प्रसन्न करने के अलावा यदि कोई एक रंश मात्र भी कार्य के अंदर कोई लालसा उत्पन्न हो गई, तो क्या होगा, कर्म बंधन, वो कर्म आपके बंधन का कारण बनेंगे। तदर्थम कर्म कौन थे, तो कर्म उसी लिए करना कौन थे, मुक्त संग समाचर, तो आप इस भव बंधन के जाल से मुक्त हो जाओगे। तो यह जो निष्काम कर्म की विधि है, जैसे यहाँ पर बताया ना श्लोक में अंत में बताया ना नैष्कर्म्यम कर्मणाम यथा, कि कर्म भी करो उसके बाद भी आपको निष्कर्म बन के कर्म करना है, यानी निष्काम भाव से कार्य करना है। तो जो हम तीसरे अध्याय में उसकी पूरी भगवान ने डिटेल दी है कि किस तरह से आप इंद्रियों मन और बुद्धि को कैसे भगवान की सेवा में अर्पित करके सारा कार्य करोगे, हर कार्य भक्ति भगवत सेवा के लिए, भगवत भक्ति, सारे कर्मों का फल कृष्ण को अर्पण किस तरह करते हो, उसके विषय में डिटेल से ना नारद पंचरात्र में बताया गया है। अब ये क्यों बताया गया, क्योंकि संसार में सब लोग के हृदय सकाम कर्म के करने के लिए इच्छा करते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य करें कि इससे हमारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो। हर जीव इच्छाओं से भरा हुआ है, इच्छा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। इसे भगवान ने क्या किया, क्योंकि भगवान ये चाहते नहीं है कि मेरा बच्चा इस संसार में भाव रूप, ये जो भाव बंधन रूपी जाल है उसमें सदैव जकड़ा रहे, क्योंकि यदि वो अगर वो आना अच्छे काम करेगा, सकाम कर्म करेगा तो उसे फल मिलेंगे, बंधन का कारण बनेगा। अपराध करेगा तो उसे उसके अनुसार भी उसे अपराध की सजा मिलने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, बंधन का कारण बनेगा। तो फिर भगवान क्योंकि जीव से बहुत बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान ने अवतार लिया है, किसका, देवर्षि नारद का। क्यों लिया है, ये शिक्षा देने के लिए कि देखो बेटा, आपका जो हृदय जो भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है ना, वो इच्छाएं पूरी करते करते आप सदैव सदैव के लिए भौतिक बंधन में फंसे रहोगे। इसे ये शिक्षा दी है कि किस प्रकार नैष्काम कर्म करके, नैष्क्रिय कार्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नैष्कर्म्यम कर्मणाम, कर्म करो लेकिन किस तरह से निष्काम भाव से कर्म करो, और संसार के भाव बंधन से छूट कर भगवान के पास जाओ, इसी के विषय में ये पूरा जो नारद पंचरात्र ग्रंथ जो नारद मुनि ने लिखा है, ये नारद मुनि की कृपा से, शिव जी के आदेश से रचा हुआ ये ग्रंथ है, और ये नारद मुनि के आने का मुख्य कारण है। वास्तव में नारद मुनि अगर देखा जाए तो पहले अभी चौथा अध्याय होगा ना, उसमें पूरा पूरा नारद मुनि के जन्म के विषय में बताया जाएगा कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे भक्तों के साथ वो रहे, और उनका जुठन का आया, फिर उनकी माता का देहांत हो गया, फिर ऐसे भगवत भक्ति जब उन्होंने स्टार्ट की तो फिर उनको नारद जी का पथ मिला। लेकिन उसके बाद ये जो उन्होंने अवतार लिया, उसके बाद नारद मुनि का अवतार लिया, वो क्यों लिया, उनका कारण इसमें बताया गया है। क्या कारण बताया, तंत्रम सात्वतम आश्चष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यथ, कि उन्होंने संग्रह किया समस्त वेदों में से उस भक्ति के जो विशेष भक्ति की जो बातें थी उसको संग्रह किया, और शिव जी के आदेश पर एक ग्रंथ का निर्माण किया, और उसका नाम है नारद पंचरात्र, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम किस तरह से कर्म करते हुए भी उसको निष्काम, यानी कि जिस तरह श्री प्रभुपाद ने बताया था कि कर्म तो बंधन का कारण बनता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसी तरह से दूध अगर अपच हो गया, उसी तरह से दही जो है वो आपको डाइजेशन सिस्टम सेट कर देती है, उसी तरह से कर्म बंधन का कारण बनता है, लेकिन कर्म करे बगैर तो कोई रह नहीं सकता। तो उस कर्म को ही करते हुए जब सारे फल भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो कर्म ही निष्काम कर्म बनता है, और कर्म इस निष्काम कर्म के जरिए हम भाव बंधन से छूट जाते हैं, ये शिक्षा दी है नारद मुनि ने। तो ये है नारद मुनि के आने के अवतार लेने का कारण, भगवान ने जो शक्ति आवेश अवतार लिया है नारद मुनि का, उसका मुख्य कारण है। और इसके अतिरिक्त भी नारद मुनि सदैव भगवान की लीलाओं में संग रहते हैं, वो सदैव भगवान की लीलाओं का, यूं समझो भक्तों में बहुत बड़े भक्त है, वो भगवान से क्षण के लिए भी, एक लम्हे के लिए, एक पलक के लिए भी उनका नाम जो है, भगवान का नाम उनके मुख से दूर नहीं होता। सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते हैं और बहुत बहुत शिष्य बनाए उन्होंने नारद मुनि ने। उनके बहुत मुख्य शिष्य हैं सबसे बड़े वेद व्यास जी, जिनके ग्रंथ हम पढ़ते हैं, जिन्होंने सारे वेदों की रचना की। इनडायरेक्टली आज हम जो भी भक्त है ना, वो सब भक्त वेद व्यास जी के ऋणी है, क्योंकि उन्हीं की रचनाओं को, उन्हीं के शास्त्रों को, के व्याख्याओं को पढ़कर ही हम भक्त बनते हैं। तो हमारे मानव समाज के जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये समस्त की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। उसके अतिरिक्त वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, वो किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। ध्रुव भगत किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। प्रहलाद किसके शिष्य हैं? नारद मुनि के। और एक बार तो एक बड़ा कॉमेडी हो गया ऐसे, मतलब शास्त्र में से बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने 10,000 शिष्य, अपने पुत्र उत्पन्न किए। पुत्र उत्पन्न किए क्यों किए? ताकि वो संसार की रचना, यानी संसार उत्पत्ति करने में मेरी सहायता करेंगे। 10,000 बेटे पैदा हुए, लेकिन दक्ष ने उनको कहा कि पहले थोड़ी तपस्या करके आओ, हृदय शुद्ध होगा, उसके बाद विवाह करेंगे। तपस्या करने गए और जब वापस आ रहे थे, रास्ते में उनको कौन मिल गए? नारद मुनि। और नारद मुनि ने उनसे 10 प्रश्न पूछे, 10 पहेलियां जैसे पूछी, बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की, कि ऐसा कोई चक्र है जो कभी थमता नहीं है, एक ऐसा बिल है जहाँ अंदर तो जाया जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आया जा सकता, और एक ऐसी नदी है जो दोनों बाजू में बहती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे और फिर बोला कि आपको इनके उत्तर पता है? तो उन्होंने सबने बोला, हरिवंश के नाम से ये थे, तो बोला नहीं, हमें तो इनके उत्तर नहीं खबर। तो बोला इतने छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर नहीं खबर है और तुम चले हो घर संसार बचाने के लिए? घर संसार बसाने में कितनी मथाकुटी होती है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम ऐसा करो, तुम घर मत बसाओ, मतलब गृहस्थ नहीं बनो, आप और भी जाओ तपस्या करने के लिए। तो उनको तपस्या करने के लिए वापस से भेज दिया। फिर वापस जब दक्ष को पता चला कि मेरे 10,000 पुत्रों को इसने ब्रह्मचारी बना दिया है, तो फिर है ना बहुत उसको क्रोध आया। लेकिन फिर दक्ष को है ना आदेश हुआ कि तुम उससे क्रोध मत करो, तुम क्या करो और भी पुत्र उत्पन्न करो, तुम तो दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, तुम और भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हो। तो दक्ष ने क्या किया, 1,000 और भी पुत्र उत्पन्न किए। तो ये भी गए तपस्या करने के लिए, जब आ रहे थे तो इनके साथ भी नारद मुनि की भेंट हो गई और नारद मुनि ने उनको ये कुछ भी नहीं कहा, उनको खाली ये कहा देखो तुम लोग छोटे भाई हो ना, अब देखो तुम्हारे बड़े भाई क्या कर रहे हैं, वो जा रहे शादी करने के लिए जो तुम जा रहे हो, हमें हमेशा अपने बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए। तुम्हारे भाई हैं 10,000 हैं, बेवकूफ हैं क्या उधर बैठ के तपस्या कर रहे हैं? वो उनके अंदर क्या बुद्धि नहीं है? खाली तुम जो 1,000 अभी आए उनके अंदर ही बुद्धि है। वो लोग जब ये ना विवाह करना नहीं चाहते, वो अपने अंदर इतना सामर्थ्य नहीं महसूस कर रहे कि हम विवाह करके ग्रस्त कर सकते हैं, तो तुम तो अभी छोटे हो, तुम कैसे कर सको? जो तुम्हारे बड़े भाई कर रहे हैं तुम्हें भी वही करना चाहिए, जा तपस्या कर। तो उनको भी भेज दिया तपस्या करने के लिए। फिर जब दक्ष को पता चला तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया, फिर नारद मुनि को श्राप दिया कि क्योंकि ज्यादा टाइम एक जगह पे खड़े होते हो इसलिए प्रचार करते हो, और मेरे सारे बेटों को है ना तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, अब मैं तुमको श्राप देता हूँ 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं टिक सकोगे। और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने पुत्रियां उत्पन्न की, देखिए भाई पुत्रियां उत्पन्न करूंगा तो उनको कैसे ब्रह्मचारी बनाएगा। तो इस तरह से ये नारद मुनि इस तरह से प्रचार करते थे फटाफट, इतने सारे 1,000-10,000 लोग को। तो ये सबसे बड़े प्रचारक हैं हमारे परंपरा में। श्री प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि मुझे भी लगता है किसी ने ना इस तरह से नारद मुनि की तरह मुझे भी श्राप दे दिया, क्योंकि मैं भी सबके पुत्रों को, ग्रस्त लोग के पुत्रों को ब्रह्मचारी बना देता हूँ, तो फिर मुझे भी श्राप दिया है और इसी तरह मैं भी नारद मुनि की तरह भटक रहा हूँ, कहीं यहाँ पर, कहीं वहां पर, कभी वहां पर। लेकिन वहां के मिश्र भी भगवान की शक्ति आवेश अवतार है, जो
इस तरह से भक्ति में तहलका मचा दिया उन्होंने आते ही। पहले श्री संप्रदाय के जो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद जी के विषय में किसी भक्त के साथ उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे जो रामानुजाचार्य हैं, हाँ उनके किसी भक्त ने कहा था, जो भक्त आपस में मिल रहे थे ना, तो उन्होंने कहा हमारे जो श्री रामानुजाचार्य हैं उन्होंने केवल भारत में ही प्रचार किया, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और आपकी श्री प्रभुपाद जी ने संसार में यहाँ तक के पाश्चात्य देश में भी प्रचार किया। तो ये सब प्रचार की जो शक्ति है वो भगवान प्रदान करते हैं, और ये सब शक्ति आवेश अवतार ही कर सकते, क्योंकि कहते हैं तार शक्ति बिना ना ही परिवर्तन। जब तक भगवान की शक्ति प्रदान नहीं होती है तब तक हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये श्री प्रभुपाद जी के ऊपर भगवान की असीम कृपा थी कि उनके जरिए ये सब प्रचार हम तक पहुंचा है, और विशेषतया आज हम जो भक्ति कर रहे हैं उसकी सारी विधि विधान जो है वो नारद पंचरात्र से, क्योंकि नारद मुनि हमारी परंपरा में आप जानते हैं ना, सबसे पहले गुरु कृष्ण ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया, और ब्रह्मा जी के बाद जो प्रथम गुरु है वो नारद है, नारद जी के बाद वेद व्यास जी के मधु आचार्य, और इस तरह करते करते यह परंपरा श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से गुजरती हुई, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास कृष्णदास कविराज महाराज नरोत्तम दास से होती हुई श्री प्रभुपाद जी तक पहुंची, और श्री प्रभुपाद जी के शिष्य आगे इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं। तो ये आज के श्लोक में हमें भगवान के तृतीय शक्ति आवेश अवतार के विषय में पढ़ा, जो कि है नारद मुनि। कृपया साथ रहिएगा, इस अध्याय में हम भगवान के समस्त अवतारों के विषय में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।